नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांस असम 2.0 निवेश और संरचना शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस यूक्रेन संघर्ष को तेजी से समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को अपनाया। आईएमडी ने अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालय और पूर्वोत्तर मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधि में वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला रावलपिंडी में ग्रुप बी मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेला जाना है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे संस्करण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि असम दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के प्रवेश द्वार तथा असीमित संभावनाओं का केंद्र बना हुआ है। राजनयिकों, प्रमुख उद्योगपतियों, विशेष प्रतिनिधियों और विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि असम पूर्वी भारत का एक विनिर्माण केंद्र बनेगा। उन्होंने इस रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाने का आग्रह उद्योगपतियों से किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार संपर्क और अवसंरचना में सुधार करने पर कार्य कर रही है। उनकी सरकार एक क्षेत्र में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने पर भी कार्य कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत कम लागत की विनिर्माण प्रक्रिया के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति में पिछले 10 वर्षों में सुधार हुआ है और केंद्र और राज्य सरकारों ने कई शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था। तब असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। यानी भाजपा सरकार में सिर्फ 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है।
असम के राज्यपाल एलपी आचार्य, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और 61 राजनयिक, कई देशों के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल, उद्योग विशेषज्ञ इस सत्र में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इस नीति के कारण सरकारी खजानों को 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा आज दिल्ली विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में शहर के आबकारी विभाग द्वारा दिल्ली में शराब की आपूर्ति की निगरानी और विनियमन के तरीके में कई विसंगतियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, होटल्स, क्लबों और रेस्टोरेंट को लाइसेंस देने में उल्लंघन पाया गया है। इनमें कहा गया है कि विभाग विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करने के लिए आबकारी नियमों और शर्तों से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की जांच किए बिना लाइसेंस जारी कर रहा था। सीएजी रिपोर्ट में अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दे पर भी इशारा किया गया है। 200 से अधिक पृष्ठों की रिपोर्ट में प्रवर्तन कार्य के खराब निष्पादन की ओर इशारा किया गया, जिसमें गलत निरीक्षण रिपोर्ट से लेकर अपर्याप्त कारण बताओ नोटिस और क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों की सुरक्षा जमा की गलत वसूली और शराब नीति में अन्य खामियां पाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश में स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विकेंद्रीकरण और अधिक शोध पर जोर दिया। राष्ट्रपति पटना के बापू सभागार में पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर छोटे शहरों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो इससे बड़े स्थानों पर दबाव कम होगा। उन्होंने एआई और रोबोटिक्स का उदाहरण देते हुए कहा है कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में मरीजों के इलाज में क्षमता और सटीकता बढ़ेगी। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई है कि पीएमसीएच को 5,400 से अधिक बिस्तरों के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक अलंकरण समारोह में भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा प्रदान किए। इस अवसर पर कुल 32 पदक प्रदान किए गए हैं, जिनमें विशिष्ट सेवा के लिए 6 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, वीरता के लिए 11 तटरक्षक पदक और सराहनीय सेवा के लिए 15 तटरक्षक पदक शामिल है। अपने संबोधन में श्री सिंह ने कहा है कि सरकार भारतीय तटरक्षक बल की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तटरक्षक बल को 9,676 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के बजट से 26% से अधिक है। मंत्री ने कहा है कि तटरक्षक बल के आधुनिकीकरण की दिशा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर में 3,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। आध्यात्मिकता और नवोन्मेष को मिलाकर यह सेंटर आधुनिक तकनीक के जरिए प्राचीन पौराणिक कथाओं को जीवंत कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भूटान के राजा जिग्मे खेसा नामग्याल ने भी डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर में महाकुंभ की भव्यता का आनंद लिया और इस पहल की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने तथा रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी शांति का आग्रह करने वाले अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 10 वोट पड़े, विपक्ष में एक भी नहीं तथा फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, ग्रीस और स्लोवेनिया सहित 5 लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया। दस्तावेज में दोहराया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना तथा विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालय और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मैदानी इलाकों में बारिश में वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों में देश के पश्चिमी तट पर तापमान बहुत अधिक रहने की संभावना है। इधर भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, लोअर दिवांग वैली, लोहित, नामसाई, अंजाव, चांगलांग, तिरप, लोंगडिंग, कामले और लेपारादा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया। तवांग, अपर सुबनसिरी, शियोमी और अपर सियांग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। बंगाल की खाड़ी में आज सुबह 6:10 पर रिक्टर पैमाने पर 5 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया, जिससे ओडिशा के कई इलाकों में हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र समुद्र की सतह से 91 किलोमीटर नीचे था। ओडिशा के भुवनेश्वर, पुरी, पारादीप, बारीपदा, संबलपुर, अंगुल, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर और बालासोर में भी झटके महसूस किए गए। आंकड़ों के अनुसार इसका केंद्र पुरी से 286 किलोमीटर पूर्व में स्थित था। क्षमा करें। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति का नुकसान की कोई खबर नहीं है। और ICC पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में आज रावलपिंडी में ग्रुप बी के मैच में दक्षिण अफ्रीका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होना है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 पर शुरू होना था, किंतु बारिश के कारण टॉस में देरी हुई। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में आबकारी नीति पर CAG रिपोर्ट पेश की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस यूक्रेन संघर्ष को तेजी से समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को अपनाया। IMD ने अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालय और पूर्वोत्तर मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला रावलपिंडी में ग्रुप बी के मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेला जाना बाकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।